एक बीके सन्यासी ने मेरे से पूछा जब स्थूल जन्म होता है
स्थूल जन्म
होता है उस जगह से ही सारे देवता हो या मनुष्य हो या राक्षस हो उस जगह से ही जन्म लेता है। सो इसमें अपवित्र क्या है, अपवित्र क्या है और पवित्र क्या है मेरे से पूछा। मैं बता दिया, बहन जी ऐसे अज्ञानी तरह ये बाहर की दुनिया वाले जैसे आप बात मत करो, आप ईश्वर की संतान को मेरे को पता नहीं है कैसे ये को जवाब देंगे, आप जवाब दियो बाबा।
बोली में तो कितनी बार बताया है, शिष्टाचारी किसे कहा जाता है और भ्रष्टाचारी किसे कहा जाता है, बताया कि नहीं?
बताया।
शिष्टाचारी किसे कहा जाता है? जो श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से आचरण करते हैं जीवन में वो श्रेष्ठाचारी कहे जाते हैं, और जो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं वो भ्रष्टाचारी कहे जाते। जो भ्रष्टाचारी कहे जाते हैं वो मूत की इंद्रियों से पैदा होते हैं, मूत यूरिन, आजकल यूरिया बहुत चल रही है, अनाज में क्या डालते हैं पैदा होने के लिए?
यूरिया
डालते हैं। तो यूरिया डालने से रिजल्ट क्या आ रहा है? अनाज में बहुत कीड़े पड़ते हैं और वो कीटाणु अनाज में जब पड़ते हैं तो बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म भ्रूण के रूप में होते हैं जो देखने में भी नहीं आते पहले में। जब बड़े हो जाते हैं तो आदमी देखता है जिसमें कीड़ा पड़ गया, तो कीड़ों वाला अनाज खाते हैं। मूत की पैदाइश है तो क्या खाते हैं? मूत वाला आप खाने के आदमी होते, तो बुरा है या अच्छा है? ये सारे कीड़े इकट्ठी करके थाली में या कटोरे में रख करके तुम्हारे सामने रखते हैं तो खाओगे? नहीं खाएंगे ना। भ्रष्ट आचरण वाले अच्छा नहीं कहेंगे। और जहां से पैदा होते हैं वो भी भ्रष्ट है, श्रेष्ठ नहीं कहेंगे इनके। श्रेष्ठ इंद्रियां सतयुग और त्रेता में होती है, जहां व्यभिचार का नाम निशान नहीं होता है। बल इंद्रियों में पतन होता है, ज्ञानेन्द्रियों में भी जैसे आंखों से बच्चे पैदा होते हैं तो पतन होता है, तब तो पढ़ाई कम होती है, परंतु तीव्र गति से पतन नहीं होता है। अब यहाँ दुआ करें उसे है ही द्वैतवादी हूँ। द्वैतवादी का मतलब है दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो बच्चे।
हर एक मनुष्य में, स्त्री में, पुरुष में द्वैतवाद घुस जाता है, दो दो प्रकार का खून गिर जाता है। इसलिए द्वैतवादी युग में सब भ्रष्ट होने लग पड़ते हैं, तेजी से भ्रष्ट होते हैं, तेजी से पतन होता है। पहले धीरे धीरे होता है पतन, बाद में तेजी से होता है। और
सतयुग और त्रेता में भी वही अंग होते
हैं,
वही इंद्रिया होते हैं।
हाँ, वही इंद्रिया माने
काम इंद्रिया होते हैं, योनि और तो वही होता है।
नहीं,
इसमें फर्क तो नहीं
पड़ेगा। नहीं, वहां भ्रष्ट इंद्रियां देखने में भी नहीं आती, और यहां यहां अच्छी तरह से देखने में आती है। देखने में आती है तभी तो मरते समय स्मृति आती है। आती है या नहीं? पुरुषों को स्त्री का रूप याद आता है, स्त्रियों को पुरुष का रूप याद आता है, क्योंकि उन अंगों से काम लिया जाता है। सतयुग में तो उनकी दरकार ही नहीं। और
बाबा तो किस शरीर का बाप से जन्म लेता है?
ठीक है, जन्म तो वहीं से होता है, लेकिन वो देखने में नहीं आता। जब देखेंगे ही नहीं तो याद किसको करेंगे? जो चीज देखी जाती है वो याद की जाती है, या जो देखने में ही नहीं आती वो याद की जाती है? है?
पैदाइश तो वहीं भाग से होता है,
होती है, लेकिन वो मर्ज रहता है अंग। एक मर्ज होना और एक इमर्ज होना, अंतर नहीं है।
तो पैदाइश के समय इमर्ज होता है, बाद में फिर मर्ज होता है।
जैसे गाय का बच्चा है, जन्म लेता है तो बहुत छोटा रूप होता है, ज्यों ज्यों बाहर आता जाता है बच्चा बड़ा रूप धारण करता है और उछलने कूदने लगता है। उसी दिन उछलता कूदता है या नहीं? बोलो। ऐसे ही है वहां बच्चे की पैदाइश अति सूक्ष्म, अति छोटे रूप में होती है। हाँ, और जैसे ही बाहर आया, बाहर की दुनिया की हवा लगी सतोपदान, वो बड़ा हो जाता है। वहां कोई पालने में दो दो तीन तीन वर्ष लगे रहे और टट्टी पे साफ साफ करें माँ बाप, ऐसी स्थिति ही नहीं होती। है? हाँ, दास दासी की जरूरत नहीं होती है। वो दास दासी कहाँ होते हैं? हैं? वहाँ यथा राजा तथा प्रजा सब एक समान होते हैं, या वहाँ आर्डर चलाने की जरूरत होती है? वहाँ तो कोई बात ही नहीं है ऐसी। ये यहाँ संगम युग की बात है, जो राम राज्य में दिखाया गया है कि राम सीता गद्दी पर बैठे हैं, कोई चमर ढला रहा है, मक्खी मच्छरों को भगा रहा है, कोई छत्र छाया लिए, छत्ता छाता लिए खड़ा है, कोई पांव पखार रहा है। ये दास दासी का कर्म वहां त्रेता की बात है, यह संगम युग की बात है। संगम युग में दिखाया गया ताकि पता चले इन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया है। और इन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया। और
ये महाभारत में दिखाते हैं कि युद्ध का नियम भी होते हैं,
है?
महाभारत में दिखाते हैं कि युद्ध का नियम भी होते हैं, और सबसे पहले युद्ध का नियम कौरव ने तोड़ा, उसके बाद पांडवों को मजबूरन युद्ध का नियम तोड़ना पड़ा।
हाँ जी,
तब उनकी जीत हुई पांडवों की।
हाँ,
अभी संगम युग में ये बेहद की युद्ध को नियम उनको तोड़ना माना क्या?
अरे ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय नियम जो है वो नियम नहीं है,
श्रीमत को तोड़ना।
हाँ हाँ, बाबा ने तो बोला है सुख लेना है और सुख देना है, न दुख देना है न दुख लेना है। मतलब क्या हुआ? अरे इंद्रियां होती है सुख देने और दुख देने के लिए, इंद्रियों से सुख लेना है और सुख देना है, ये गलत बात नहीं है। सुख लेते हैं इंद्रियों से, तो चाहे देवताएं हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, नीचे तो गिरते हैं, पतित तो जरूर होते हैं। सत्युग में दो कला और त्रेता में, त्रेता में छह कला कम हो जाती है, पतन होता है या नहीं होता है? तो इंद्रियों से सुख लेते हैं या नहीं लेते हैं? इंद्रियों से, चाहे भ्रष्ट इंद्रियों से ही सही, जब भ्रष्ट युग है तो भ्रष्ट इंद्रियों से ही सुख लेंगे। सुख लेना है सुख देना है, दुख देना नहीं है दुख लेना नहीं है इंद्रियों से। लेकिन नियम है कि एक के साथ सुख लेना है, पतित बनना है, वो तो कायदा है पतित दुनिया का, लेकिन एक के साथ पतित बनना है, अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदे है। ये कायदा भगवान ने नहीं सिखाया, और हाँ
महादेव के सीरियल में दिखाते हैं गंगा महादेव को शादी करना इच्छा रखी थी, लेकिन 76 में वेद की गंगा ज्ञान में आई ना,
है?
76 में वेद की गंगा ज्ञान में आई ना,
हाँ?
तभी ऐसे इच्छा थी क्या, ऐसा हुआ क्या?
गंगा ज्ञानी तो आत्मा है या अज्ञानी आत्मा? ज्ञान गंगा को भगवान से मिलता है या कोई शैतान से मिलता है? भगवान से मिलता है। तो जो ज्ञानी आत्मा होगी, पहचान वाली आत्मा होगी, बाप को जानती होगी कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, तो किसको वर्णन करना चाहेगी जन्म जन्मांतर, है? अरे भगवान को ही वर्णन करना चाहेगी, इसमें ना करने का तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन पूर्व जन्मों का ऐसा हिसाब किताब बना हुआ है, क्या? राम तेरी गंगा मैली, अंतिम जन्म में आकर के गंगा का क्या असर होता है, हैं? गंगा मैली हो जाती है। तो जो अंतिम जन्म में गंगा मैली होती है, उसे गंगा के ड्रामा में ऐसा लिखा हुआ है, वो अहंकार के कारण कहो कैसे भी कहो, जब गंगा अवतरण होता है तो गंगा को अहंकार होता है या नहीं होता है? गंगा को अहंकार होता है, देखूं मेरा भार ये कैसे सहन करेगा, मैं अभी जाकर के तहस नहस कर दूंगी। तो कौन से धर्म वाले हैं जिनमें बहुत अहंकार होता है? सन्यासियों में बहुत अहंकार होता है। तो गंगा के जमघट में, गंगा के किनारे में सन्यासी ही इकट्ठे होते हैं, सन्यासी ही गंगा को बहुत मानते हैं, पूजते हैं। तो उनकी जमात ही सन्यासियों की है, उन सन्यासियों को पहले नंबर में है, बीज है। तो अहंकार आ जाता है। हाँ, और
हाँ, प्रजापिता की आत्मा 84 जन्मों में 53 जन्म पुरुष चला धारण करेगा।
53 जन्म हाँ
पुरुष चला धारण करेगा और 21 जन्म स्त्री चला धारण करेगा। ये सही है या गलत है?
21 जन्म
21 जन्म स्त्री चला धारण करेगा।
हाँ बताया ना, जो रुद्रमाला के वर्ण के हैं वो जन्म जन्मांतर के किस स्वभाव के हैं? पुरुष स्वभाव के। ये स्वभाव संस्कार कैसे बनता है? बनता कैसे है? कर्म से ही बनता है ना। जो कर्मों का हिसाब किताब है वो जरूर उन आत्माओं ने अनेक जन्मों में पुरुष के रूप में बजाया है, ऐसे कर्म किए हैं। इसलिए ये हो सकता है कि रुद्रमाला के मणकों में, रुद्र वत्सों में कोई ज्यादा से ज्यादा पुरुष जन्म ले और कोई कम जन्म ले, लेकिन विजयमाला में आने वाले मणकों को मुकाबले जो रुद्रमाला का आखिरी मणका होगा वो भी ज्यादा जन्म लेगा या कम जन्म लेगा? हैं? ज्यादा जन्म लेगा पुरुष से। तो नियम ये है कि ज्यादा से ज्यादा लगातार 2 जन्म पुरुष के मिल सकते हैं, या तो 2 जन्म स्त्री के मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये कहां की बात है? बैलेंस बिगड़ जाता है उस समय की बात है सृष्टि में, या जब बैलेंस बना रहता है प्रकृति में उस समय की बात है? जो द्वापर और कलयुग की बात है। सत्युग त्रेता में तो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता ही नहीं, इसलिए वहां 1 जन्म स्त्री का और 1 जन्म पुरुष का रहता है। तो वहां 1/2 जन्म हो गए पुरुष के। प्रजापिता की बात पूछ रहे हैं ना, 1/2 जन्म हो गए पुरुष के और 1/2 जन्म स्त्री के। अब लगा लो हिसाब,
10-10 फिर एक संगम से ये होता है ना
है?
फिर वो 21 जन्म है।
हाँ 21 जन्मों में संगम में 1 जन्म हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ उसके बाद 20 जन्म में 1/2 जन्म स्त्री के 1/2 जन्म पुरुष के, कितने हुए? अब इसके बाद 63 जन्म रह गए। 63 जन्मों में 2 जन्म, क्योंकि उसमें पुरुष वृत्ति सबसे जास्ती है या नंबर वार जास्ती है, इसलिए और 63 जन्मों में ये हिसाब है कि 2 जन्म पुरुष के लेगी, तब 1 जन्म स्त्री के, फिर 2 जन्म पुरुष के, फिर 1 जन्म स्त्री के। इसलिए 42 जन्म हो गए। हैं? हाँ जी।
और 31 जन्म
हैं?
और 31 जन्म स्त्री हो गए।
हाँ जी। और इसलिए एक मुरली में बोला है अव्यक्त वाणी में, सब पुरुष हैं क्या? ऐसे क्यों बोला? ऐसे क्यों बोला?
स्त्री जन्म भी लेता है। स्त्री जन्म भी लेता है?
नहीं नहीं, सब पुरुष हैं क्या? जितने पुरुषार्थ करने वाले बाबा के सामने बैठे हैं उनसे पूछा, सब पुरुष हैं क्या? इसका मतलब है
लक्ष्मी का ज्यादा स्त्री जन्म होता है।
अरे पुरुष की बात हो रही है, स्त्री की बात नहीं हो रही है। बाबा ने पूछा सब पुरुष हैं क्या? जितने भी पुरुषार्थी बच्चे हैं वो सब पुरुष वृत्ति के हैं क्या, जन्म जन्मांतर के? इसका मतलब सब जन्म जन्मांतर के पुरुष वृत्ति के नहीं है, कोई एक जरूर है नंबर वार की लिस्ट में जो पुरुष जन्म सबसे जास्ती लेता है। हाँ
निरंतर याद न रहने का तरीका
अंतर न पड़े, निरंतर याद आता रहे। जिसको निरंतर याद आएगा उसका भाग्य अच्छा बन जाएगा या खराब भाग्य रहेगा? है अच्छा भाग्य बन जाएगा। और अच्छे से अच्छा भाग्य किसका होता है दुनिया में?
भाग्यवान
वो तो बच्चे तो बहुत हैं। उन बच्चों के बीच में सबसे जास्ती भाग्यवान कौन कहेंगे? हैं? अरे मैं किस रथ में प्रवेश करता हूँ? भाग्यशाली रथ में आता हूँ ना, तो भाग्यशाली रथ जो है वो ही नारायण बनता है। अब प्रश्न क्या है?
निरंतर याद में रहने का तरीका।
तो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है कि नहीं है? हम अनुभव करते हैं, कभी हमारी याद बहुत अच्छी लगती है, टूटती भी नहीं, कम ही टूटती है, और कभी बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो भी याद टूट जाती है। कारण क्या है? पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं, जब अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता है, बहुत याद आती है ऑटोमेटिक। और जब खराब कर्मों की रील घूमती है तो हैं पुरुषार्थ कितना भी करना चाहे लेकिन अच्छा पुरुषार्थ नहीं होता, याद बहुत टूटती है। तो इसका मतलब है कि किसको याद ज्यादा आएगी? है जिसने पूर्व जन्मों में है सबसे अच्छे कर्म किए होंगे। और सबसे अच्छे कर्म किसने किए होंगे? कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप बताता है, शिव बाप, बताना अलग बात है लेकिन उसको फॉलो करना प्रैक्टिकल जीवन में अलग बात है। तो वो कौन है जिसने भगवान की श्रीमत को 100% गहराई से समझा?
राम बाबा।
और समझाई है या प्रैक्टिकल के जीवन में करके भी दिखाता होगा? करके भी दिखाता है। तो 63 जन्मों में बहुत अच्छे कर्म होने के कारण जो रील है संगम युग में वो अच्छी ही घूमेगी या खराब घूमेगी? अच्छी ही घूमेगी। तो क्या किया उन्होंने? ऐसा क्या किया जिसे अच्छे कर्म बन गए? हैं? याद 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 ब्रह्मा बाबा नहीं करते हैं?
ब्रह्मा बाबा का याद तो सही नहीं है, वो तो पहचान नहीं।
माना पहचान का मतलब है ज्ञान, जानकारी। तो मूल बात किस बात की हुई? मूल बात है ज्ञान को जितना गहराई से पकड़ेंगे उतना याद भी अच्छी आएगी। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी पहली पहली किसकी? बाप की। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ, मेरे को कोई बिरले बिरले जानते हैं। तो उन बिरलों की लिस्ट में हम आएंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा ही होगा। उसके लिए क्या करना है? ज्ञान तो ये कहता है जितना त्याग उतना बड़ा भाग्य। बहुत भाग्यशाली बनना है, प्रजापिता जैसा भाग्यशाली रथ बनाना है संगम युग में, तो क्या करना है? हैं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा त्याग करके दिखाएं। दिखाएं भी नहीं, प्रैक्टिकल में करके करने लग पड़े। त्याग क्या होता है? کیا تیاگ ہوتا ہے؟ تلوار نے سر کاٹ دے، جیسے راون نے کیا تھا۔ راون نے کیا تیاگ کیا؟ وہ انہوں نے گیتوں میں لکھ دیا ہے، سو سو شیشوں کو کاٹ کاٹ شنکر کو میں نے پوجا ہے۔ اب سو شیش تو ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ شیش کاٹنے کا مطلب ہے اپنی اچھاؤں کو۔ اچھائیں کہاں ہوتی ہیں؟ باہوں میں ہوتی ہیں، دھڑ میں ہوتی ہیں، ٹانگوں میں ہوتی ہیں۔ اچھائیں کہاں ہوتی ہیں؟ سر میں ہوتی ہیں۔ اچھاؤں کو تیاگ دینا، ڈھیر پرکار کی اچھائیں پیدا ہوتی ہیں اس دنیا میں۔ اچھا ماترم اویدیا۔ تو کیا کریں؟ کھانے کی اچھا چھوڑ دیں، کھانے پینے کی اچھا چھوڑ دیں۔ کھانے پینے بغیر چلے گا نہیں، کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، رہنا ہے، لیکن اتنا ہی کرنا ہے جتنا جیون میں پرسارتھ کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ پرسارتھ کرنے کے لیے کھانا ہے تو کتنا ضرورت ہے؟ دو روٹی کھاتے رہیں گے نمک کی تو زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ بس اتنا ہی ہے نا، کیونکہ بھگوان کے ڈھیر سارے بچے ہیں، 500-700 کروڑ، ان میں پتا نہیں کتنے ہیں جو بھوک مرتے ہیں۔ مرتے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہم ہی سارا کھا جائیں بڑھیا بڑھیا ہیں۔ اگر بڑھیا بڑھیا جس سمے کھا جائیں گے تو اتنے تیاگی تو نہیں ہوئے۔ ہاں، شریر کو پوشن کرنا ہے، شریر سے سیوا کرنی ہے، تو اتنا تو لینا ہی ہے جو شریر اچھے سے ایشوری سیوا کر سکے، تو وہ تیاگ کرنا ہے جو سہج سہج ہو سکتا ہے۔ تن کا تیاگ، ایشوری سیوا میں ہڈی ہڈی سواہا کرنی پڑتی ہے۔ کرنے کے لیے بولا ہے، کس کا مثال دیا؟ ددھیچ رشی مشن۔ ایشوری سیوا میں جیسے ددھیچ نے اپنی ہڈیوں کو سواہا کر دیا، جو ہڈیاں سواہا ہوتی ہیں، ہڈیاں گھستی ہیں، چور چور ہوتی ہیں، وہ کس بات سے ہڈیاں گھستی ہیں؟ ایشوری سیوا کرنے سے ہڈیاں گھستی ہیں یا کسی اور کارن سے ہڈیاں گھستی ہیں؟ اگر ہڈیاں گھستی ہیں ایشوری سیوا میں، تو سیوا کرنے والے کو باپ کی یاد زیادہ آتی ہے یا کم آتی ہے؟ کیونکہ باپ ان بچوں کو یاد کرتا ہے، کن بچوں کو؟ سیواداری بچوں کو۔ تو سیواداری بچوں کو جب باپ یاد کرتا ہے تو وہ تو بہت بھاگیشالی ہوئے۔ باپ جن کو یاد کرتا ہو ان میں امنگ اتساہ زیادہ بڑھے گا کم بڑھے گا؟ زیادہ بڑھے گا۔ تو دیکھا جاتا ہے جو بابا نے بولا، شریر بھل کیسا بھی ہو لیکن آتما پاورفل ہونا چاہیے۔ آتما پاورفل ہوگی تو جاستی یاد کرے گی، جاستی سیوا کرے گی یا کم سیوا کرے گی؟ جاستی یاد کرے گی، جاستی سیوا کرے گی، تو سیوا سے بھاگی بنتا ہے۔ سیوا کا میوا خوشی اس جنم میں بھی ملتا ہے اور جنم جنمانتر کے لیے بھی خوشی ملتی ہے۔ جیسے کوئی بیمار آدمی ہے، اچھے سے اچھی اس کو دوائیاں ہاسپٹل اور ڈاکٹر مہیا کیے جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا؟ ارے دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ لیکن ان کی مانسک استھتی جواب دے جاتی ہے، अंदर से उमंग उत्साह खलास हो जाता है, खुशी नहीं रहती है। तो खुशी रहने से बीमारी ठीक होती है या मायूस रहने से बीमारी ठीक होती है? खुशी रहने से बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो यही बात है।
भारत और भरत इनका भिन्नत क्या है? भारत नाम से भारत नाम आ जाए भारत को, और भरत तो और इस्लाम का बीज है ना, कैसे कैसे
पुत्र के अर्थ में या फॉलोअर के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, ब्रह्म में एक मात्रा बढ़ गई। विष्णु वैष्णव मात्रा बढ़ गई। शिव शैव मात्रा बढ़ गई। बुद्ध बौद्ध मात्रा बढ़ गई। तो मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। तो भरत शब्द है भरण पोषण करने वाला, और जो भरण पोषण करने वाला भरत है उसका बच्चा जिसकी षष्ठी के आदि में भरत ने भरण पोषण किया था, जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है। तो दो विदेशी खड़े हुए हैं, एक इस्लामी और क्रिश्चियन। जरूर कोई एक ने ज्यादा भरण पोषण किया होगा। तो जिसने जास्ती भरण पोषण किया उसका नाम भरत पड़ा। अरे भरण पोषण करने वाले को तो विष्णु कहा जाता है। विष्णु सारी दुनिया का भरण पोषण करता है या एक का भरण पोषण करता है? तो यहां भरत का नाम भरत है और भरण पोषण करने वाला अर्थ क्यों लगा लिया?
विष्णु वाले को
इसलिए लगा लिया कि विष्णु का जो प्रधान पार्ट बजाने वाली आत्मा है ब्रह्मा सो विष्णु, वो प्रधान पार्ट बजाने वाली विष्णु वाली आत्मा विश्व का पिता है, और विश्व के पिता का जिसने पोषण कर लिया, भरण पोषण कर लिया, जैसे सारे विश्व का भरण पोषण कर लिया। अगर पिता का ही भरण पोषण न हो तो विश्व में जो 500-700 करोड़ हैं, उनका भरण पोषण हो जाएगा? नहीं हो सकता। और
एक भाई का प्रश्न है, बीवी के भाई का, अपना पेट के लिए भेड़ बकरी मुर्गी का पालन कर सकते हैं?
बाबा ने सिर्फ एक धंधे के लिए इनकार किया है मुरली में, वो धंधा है शराब का धंधा, बहुत खराब है। बाकी दुनिया के धंधे तो सब ही खराब हैं। क्या जैसे गीता में कहा है, यज्ञ के बगैर दुनिया के जो भी कर्म हैं वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। बंधन में डालने वाले हैं। एक यज्ञ कर्म ही ऐसा है, यज्ञ सेवा, जिसमें कोई भी बंधन नहीं बनेगा, कोई भी प्रकार का दुख नहीं बनेगा। इसलिए मुरली में बोला, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। अब जो चाहे सो करो, रिजल्ट इसी दुनिया में इसी जन्म में आने वाला है हर एक के सामने। क्या रिजल्ट आने वाला है? है कोई का कितना भी दुनियावी धंधा कितना बड़ा लंबा चौड़ा फैला हुआ हो, دنیا والے اسی طرف دیکھ رہے ہیں، ارے یہ تو بہت آگے بڑھ گیا، لیکن اس کے لیے بھی ایک دن کیسا آوے گا؟ سارے دھندے چوپٹ ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، اور لاسٹ میں جا کے ایسی آتمائیں جو ساہوکار آتمائیں ہیں، آج کی دنیا میں کوئی بہت بہت ساہوکار ہیں یا نہیں ہے؟ بھارت میں کون ہے؟ ٹاٹا برلا. تو وہ گھاٹے میں گئے ہوں گے سنگم یگ میں، یا منافع میں گئے ہوں گے؟ گھاٹا ہوتے 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 دیکھا کہ اب کچھ نہیں بچا، تب ایشور کی شرن میں جاتے. تو انت میں ایشور کی شرن میں جاتے ہیں، تو جو کچھ بھی بچا کچھ ہے وہ سارا ایشوری سیوا میں انت میں لگا دیتے ہیں. آدمی جنہوں نے لگایا ان کا بھاگی زیادہ بنے گا، یا بالکل انت میں جنہوں نے پورا لگایا تن من دھن ان کا زیادہ بنے گا؟ آدھی والوں کا زیادہ بنے گا، انت والوں کا بنے گا، کیونکہ اس سمے کے حساب سے انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا. لیکن انت کے سمے میں بنے گا، سشتی کے آدھی کے سمے کا، مدھی کے سمے کا نہیں بنے گا. تو انتم جنم میں پراپتی ہوئی یا بیچ والے جنم میں پراپتی ہوئی یا آدھی میں پراپتی ہوئی؟ انتم جنم میں پراپتی ہوئی.
انتم میں تو بابا سویکار نہیں کریں گے.
انت میں سویکار نہیں کریں گے؟ کوئی بابا سویکار کرے نہ کرے، ہم ایشوری سیوا میں لگائیں گے. کیا بابا سویکار کرتا ہے تبھی ایشوری سیوا میں لگتا ہے؟ ایسے ہے؟ ہم ایشوری سیوا میں اپنی اچھا سے نہیں لگا سکتے؟
بابا کو دینا پڑتا ہے.
ہیں
بابا
ہاں ایشوری سیوا میں لگے گا تو دینا بھی پڑے گا. ایشوری سیوا کے لیے کوئی منع کر سکتا ہے؟ نہیں منع کر سکتا.
بابا نے بولا ہے کہ ہم کیا کریں گے تمہارے پیسے.
اچھا بابا جس کو نمت بنا رہا ہے وہ بھلے نہ لے، لیکن جو ایشوری سیوا میں لگانے والا ہے وہ لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا ہے؟
کیسے لگا سکتا ہے جب وہ اس میں لینے والا ہی نہیں
ہے؟
ایشور لیتا ہی نہیں.
21 جنم کے لیے بولا ہے، 21ویں جنم کے لیے بولا ہے. اس سنگم یگ میں جو شریشٹھ سے شریشٹھ جنم ہے، جہاں سوریوشی پراپتی کرتے ہیں ڈائریکٹ بھگوان سے، اس کے لیے نہیں بنے گا. نہیں سمجھے؟
ابھی بابا نے بتایا کہ ابھی جو لگانا ہے لگاؤ، بعد میں کیا کریں گے تمہارے پیسے سے، ایسے بتایا.
بعد میں جب سوریوشی راجدھانی پوری استھاپن ہو گئی 2028 میں، پھر لے کے کیا کریں گے؟ پھر تو سوریوشی جتنے تیار ہونے تھے 4.5 لاکھ، وہ 4.5 لاکھ تیار ہو گئے کہ نہیں؟ مطلب وہ پد نہیں ملے گا، کیونکہ نمت لینے والا وہ نمت ہے ہی نہیں لینے کے لیے. نمت اور ڈھیر بن جائیں گے، جیسے آج بیسک میں دیدی دادی دادا نمت بن گئے، وہ ساکار پکڑ میں آئے گا. ایک ہاتھ لینے والا، ایک ہاتھ دینے والا، وہ ایک ہاتھ ہاتھ میں آئے گا.
وہ ابھی ختم ہو گیا نا،
ہیں
بابا نے ہاتھ میں نہیں لیتا ہے.
کیا
ابھی بابا ہاتھ میں نہیں لیتا ہے؟
بابا ہاتھ میں لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے، آپ پیچھے لگے رہتے ہیں کیا؟ ہاں ہاں
اسی کا لینا دینے کا کیا ہے بچہ؟ اسی کا لینا دینا
اسی لینا دینا
दृष्टि लेने देने का क्या अर्थ है, है? दृष्टि कौन से अंग से ली और दी जाती है? आंख से। आंख इंद्रिय है या नहीं है? है? इंद्रिय का संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। और सबसे जास्ती संगक का रंग कौन सी इंद्रिय का लगता है? सात्विक है, आंख का लगता है। तो अर्थ समझ में नहीं आया। भगवान की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है या 500-700 करोड़ मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? भगवान की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। भगवान ऐसी दृष्टि देता है और लेने वाले ऐसी दृष्टि लेते हैं कि वो वाइब्रेशन से सृष्टि पैदा करने लायक बन जाते हैं। तो दृष्टि से भी नहीं, उससे भी ऊंची स्टेज। और
दान एक ना
एक बोलने में एक पॉइंट आया, एक कदम रखे तो दस कदम का,
सौ कदम, दस कदम नहीं, तुम एक कदम बढ़ाएंगे तो बाबा सौ कदम आगे बढ़ा करके तुम्हारे साथ हाथ में लाएंगे।
जन्म जन्मांतर का कर्म आए तो वो भी याद करे तो खत्म होना है।
हाँ,
एक बार तुमको याद किया तो
है?
एक बार तुमको याद किया तो
हाँ,
सब बार उनको साथ ही देता।
हाँ ठीक है,
कर्म का क्या तो खत्म है तो खत्म होना।
ठीक बात है, तुमने एक बार याद किया, दिल से याद किया कि मेरा तो एक शिव बाबा और दुनिया में कोई नहीं। वो एक बार याद किया तो बाबा सौ बार तुमको याद करेगा। जैसे शास्त्र में आता है शिशुपाल के लिए क्या कहा भगवान ने, सौ गलतियां तुम्हारी माफ, उसके बाद एक गलती भी अगर की तो माफ नहीं होगा। और विदु माने जानना, विद माने जानकारी, विदु माने जानकार, विदुर तो जानकारी लेने वाला हुआ ना। कम जानकार है या ज्यादा जानकार है? ज्यादा जानकार।
बाबा ज्ञान योग धारणा सेवा वो कुछ भी नहीं पुरुषार्थ के, क्योंकि ड्रामा बड़ा है लेकिन करण करावरना हाथ तो शिव बाबा ही है।
हाँ तो कराएगा, मारपीट के कराई लेगा, करावन आ रहे ना, वो खुद नहीं करेगा, करे या ना करे, लेकिन तुमसे क्या करेगा, है कराएगा।
बीके वाले एडवांस का मुकाबला जान के आधार पर तो नहीं कर सकते।
हाँ,
मगर वो ये रास्ता अपनाते हैं जैसे कि प्लानी रूस और ये बाहुबल का उपयोग करते हैं, क्योंकि ज्ञान का तो उनके पास है ही नहीं पावर। तो हम और ये रिसर्च भी कर रहे हो तो ज्ञानी न्याय तरीके से कैसे करना है,
है?
वो लोग मुरली के मंथन के बजाय कि ज्ञानी कैसे करना है ये रिसर्च करते हैं, इन्वेंशन करते हैं।
हाँ?
तो उसके लिए हम बच्चे कैसे उसको जवाब दें,
हैं?
वो ज्ञानी करते हैं ना।
हाँ, हाँ।
एडवांस के बच्चे कैसे उनके लिए जवाब देना, उनको कैसे उत्तर देना है?
वो ग्लानी करेंगे तो उनको जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा?
बीच पर मिलेगा।
अरे ग्लानी ही मिलेगी ना, जो अपने जीवन में लगातार दूसरों को स्नेह करेगा उसको जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा, स्नेह मिलेगा। जो अपने पुरुषार्थ जीवन में लगातार सहयोग करेगा, दोस्तों को भी सहयोग दुश्मनों को भी सहयोग, उसको क्या मिलेगा, जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा, सहयोग मिलेगा। जो सहानुभूति करेगा उसको सहानुभूति मिलेगी। तो देते जाओ देते जाओ देते जाओ, पर चिंतन नहीं करना है कि क्या करते हैं ये, तो हम क्या करें इसके बदले में। बदला नहीं लेना है लेकिन क्या करना है, बदल के दिखाना है। जो तो को कांटा बोवे ताए बोए तू फूल, और रिजल्ट में क्या होगा है, तो को फूल के फूल हैं और बाको हैं त्रिशूल, और ही बड़े बड़े जन्म का अंतर कांटे मिलेंगे। हाँ
जो बाबा को जब जेल में डाला था ना, बाबा को जब जेल में डाला था ना, पुलिस ने उन पर आग उठाया बाबा के ऊपर,
हाँ।
उन लोगों को क्या सजा मिलेगा?
वो गवर्नमेंट के नौकर चाकर हैं और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के आधार पर चलने के लिए नौकरी कर रहे हैं। ऑफिसर्स जैसा ऑर्डर करेंगे वैसे ही करेंगे या कुछ और करेंगे अपनी मत पर? इसलिए उनका उतना दोष नहीं है। फिर भी
ऑर्डर देने वाले ऑफिसर को दोष
है, ऑफिसर्स का दोष, लेकिन उनको अपनी अकल तो है। कुम्हार या धोबी का गधा किसके आर्डर पर चलता है, है? कुम्हार या धोबी के आर्डर पर चलता है, उससे ऊंचा पद तो गधा का नहीं मिल जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। बड़े बड़े ऑफिसर्स ऑफिस में लिख देते हैं कर्म करना ही पूजा है, हम और धर्म बरम कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ कर्म करते हैं। तो कर्म करना ही पूजा है, उससे पहले एक शब्द बढ़ा दिया या गधे का कर्म करना ही पूजा है, तो ठीक है या नहीं है? गलत हो जाएगा ना। तो जो कर्म करते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स और कहते हैं कर्म करना ही पूजा है, उनके ऊपर कोई कर्म कराने वाला तो नहीं बैठा है, बैठा है या नहीं बैठा है, है? बैठा है। और जो बैठा है वो आज की दुनिया में सर्वोपरि कौन है? छोटे मोटे ऑफिसर्स के ऊपर बड़े ऑफिसर बैठे हैं,
उनके ऊपर मिनिस्टर,
बड़े ऑफिसरों के ऊपर मिनिस्टर बैठे हैं, मिनिस्टरों को मिनिस्टर बनाने वाला कोई है? कौन आज की दुनिया में? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला कोई है आज की दुनिया में? है कौन? प्रजा। प्रजा में भी नंबर वाले हैं ताकत वाले या एक जैसी ताकत वाले हैं? है वोट के हिसाब से नहीं बनते हैं प्रधानमंत्री या मंत्री या मिनिस्टर वगैरह,
एमपी से सिलेक्शन करता है बाबा।
हाँ जी, कोई ऐसा आदमी देखा जो इलेक्शन में एक भी पैसा नहीं खर्च करे और इलेक्शन जीत जाए? देखा नहीं। तो आज की दुनिया में पैसे वाले ही इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं। उनका नाम है धृतराष्ट्र। राष्ट्र की सारी धन संपत्ति युक्ति से उन्होंने अपनी मुट्ठी में ले ली है और उस धन संपत्ति को मनचाहे लोगों को लुटाते रहते हैं। करो वोटिंग, वोट इकट्ठे करो, कैसे भी करो वोट इकट्ठे करो। ऐसे चल रहा है कि नहीं? बोलो, चल रहा है। तो वो धृतराष्ट्र नहीं दिखाई पड़ रहे जिनके हाथों में कौरवों की सत्ता है? कुरु की औलाद कौरव, कुरु माने करो। गांधी जी क्या कहते थे? राम राज्य लाएंगे। तो राम राज्य लाने वाले खुद को समझते थे या राम भगवान को समझते थे? खुद को समझते थे। उनके फॉलोअर्स भी ऐसे ही कर रहे हैं। करो, दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे। कर रहे हैं या नहीं है? अपनी ढंग में, धमक में आप उनको अच्छी बात सुनाने जाते हैं तो सुनने के लिए टाइम देते हैं? क्यों नहीं देते? हम अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, वो कहते भी आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। अरे ये तो हम भी जानते हैं, दुनिया की भाग दौड़ की दुनिया में आज समय की सबसे ज्यादा वैल्यू है। और जो बहुत वैल्यूएबल चीज है वो तुम ईश्वरीय सेवा में नहीं लगा सकते तो क्या लगाएंगे? वो उनको अहंकार है, हम नई दुनिया बनाएंगे, हम स्वर्ग बनाएंगे, हम पैराडाइज लाएंगे। कुरु की औलाद कौरव शोरगुल करते हैं दुनिया में, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करके दिखाएंगे। जनता को बरगलाते हैं कि नहीं? बोलो, नहीं बरगलाते? बरगलाते। फिर पहली पंचवर्षीय योजना बनाई,
बार बार बनाते
और उसमें घोषणा की हम इस पहली पंचवर्षीय योजना में भारत को ऐसा बना देंगे। फिर क्या हो रहा है? बार बार वही पंचवर्षीय योजनाएं दोहराते जा रहे हैं और हालत बिगड़ती जा रही है, गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं या साहूकार बन रहे हैं? गरीब बनते जा रहे हैं। तो ये सब बिगड़ी हुई हालत का मुखिया कौन हुआ? धृतराष्ट्र हुए।
हाँ, कार्तिक मास में शिव की पूजा को बहुत महत्व है। बेहद में कार्तिक मास माने क्या?
एक होता है नाम कृतिका, कहते हैं कृतिकाओं ने, छह कृतिकाओं ने एक बच्चे को पालना दी, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय पड़ा। वो कार्तिकेय ने जब पुरुषार्थ किया तो अंतिम समय में पुरुषार्थ किया होगा या पहले ही किया होगा? हाँ, जब अंत समय आ जाता है वर्ष का, कार्तिक के बाद कितने महीने रह जाते हैं? हैं? हाँ, तो वो पुरुषार्थ करना शुरू करता है। तेजी से पुरुषार्थ करता है और अपने टारगेट में सबसे ऊंचा बन जाता है। उसने क्या टारगेट लिया? बाप का रास्ता था प्रवृत्ति मार्ग का, उसने कौन सा रास्ता अपनाया? निवृत्ति मार्ग का रास्ता अपनाया। निवृत्ति मार्ग में उसने सबसे ऊंचा पद ले लिया, ऊंचे से ऊंचा सन्यासी। शास्त्रों में दुनिया में कौन गाया जाता है? हैं? भीष्म पितामह। तो कार्तिक मास इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है कि कार्तिक ने जो सबसे बाद में ये पुरुषार्थ किया तो अपने धर्म में सबसे ऊंचा पद पाया। कोई भी आत्मा पुरुषार्थ करके अपने धर्म में ऊंचे से ऊंचा पद पा सकती है। इसलिए कार्तिक मास का गायन है। और
बाबा यज्ञ का आदि में एक आत्मा एक तरफ और सभी आत्मा दूसरी तरफ, लेकिन अंत में मिनिमम दो आत्मा एक तरफ और सभी आत्मा एक तरफ होता है?
नहीं, आप लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता के लिए बात कर रहे हैं।
ऐसा नहीं बाबा, वही आत्मा और बाबा के आत्मा के लिए
नहीं। संक्षेत्र में दो आत्मा एक साथ एक तरफ हो गई या एक ही आत्मा एक तरफ थी और सारी दुनिया बाहर की दुनिया भी बीके की दुनिया भी और एडवांस के तो कोई थे ही नहीं, एक आत्मा एक तरफ थी या दो आत्मा एक तरफ थी? एक ही आत्मा एक तरफ थी। ऐसे ही अंत में भी होगा, आज में भी ऐसे ही था।
आत्मा
शिव दुनिया की आत्माओं की बात है, शिव तो अकर्ता है।
बाबा वही तो नहीं छोड़ता बाबा
है,
वही तो अंत में भी नहीं छोड़ता।
हाँ, इनमें पूछो कौन है जो कहता है मैं अंत में छोड़ दूंगा, पूछो पूछो ना, तुम बड़े सरताज
पक्का बाबा
तो बोल बोल कर रहे। एक होते हैं गरजने वाले और एक होते हैं बरसने वाले। तुम कौन सी लिस्ट में आ गए
बाबा? लेकिन मैं
लेकिन 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 क्या
तो दूसरा सहारा या दूसरा प्रजापिता दूसरा आरंभ नहीं है, एक ही है।
जब परीक्षा हो तब पता चले,
परीक्षा हो भी कुछ भी हो जाए,
फाइनल परीक्षा होने के बाद पता चलता है। अभी तो फाइनल परीक्षा हुई नहीं है, कोई कुछ भी बोले हम क्लास में नंबर वन आके दिखाएंगे। हम नंबर वन ऊंचा पद लेंगे, हम बड़े से बड़े ऑफिसर बनेंगे। कोई स्टूडेंट को मना है ये कहने के लिए? मना है नहीं? हाँ
बाबा, लौकिक दुनिया में रिजल्ट के बाद रिवेलेशन को अपने करने के बाद वो रिवेलेशन में पश्चात भी बहुत आता है, ऐसा ऐसा वेद में होता है क्या?
क्या बोला?
अभी लौकिक दुनिया के एग्जाम्स में रिजल्ट तो होता है ना, रिजल्ट होने के बाद रिवेलेशन को डालता है।
क्या मतलब?
अब एग्जाम जब हो जाते हैं ना,
हाँ,
एग्जाम होने के बाद अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि मेरा पेपर किसी से चेक नहीं हुआ है,
अच्छा नहीं हुआ,
अच्छा मेरी ठीक चेकिंग नहीं है, मुझे कम मार्क्स मिला है,
हाँ,
दोबारा वो रिक्वेस्ट करता है हमारे पेपर फिर से चेक किया जाए,
रिवैल्यूएशन,
तब उसको रिवैल्यूएशन बोलते हैं।
अच्छा,
उनके नंबर ज्यादा भी मिल जाते हैं,
ज्यादा भी मिल जाता है, परसेंट भी आ जाता है।
अच्छा,
भाई तो वेद में होता है क्या?
अच्छा, तो आप अभी क्या कर रहे हैं?
देखो हाँ
यूनिवर्सिटी में दो आत्मा ऐसा
हाँ जी बोलो ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है। शिव बाबा की श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट है, जो एक बार हो गया वो हो गया। हाँ
गजकेश्वरी योग मन क्या बाबा का गजकेश्वरी योग
गजकेश्वरी
योग
गजकेश्वरी योग एक आदमी बोलो
गजकेश्वरी योग
गजकेश्वरी योग हाँ
मन क्या बाबा क्या
जैसे गज माने हाथी और केसरी माने शेर इनका मेल हो जाए तो कौन जीतेगा है केसरी जीतेगा शेर ही जीतेगा
मेल होता है मेल होता है
कौन शेर
गज और केसरी की
शेर हारता है हाथी से हाँ
अगर मेल होता है गज और केसरी का
मेल माने योग
हाँ दोनों इकट्ठे होंगे
इकट्ठे हो जाए
एक तरफ से धक्का मारने वाले होंगे तो दोनों मतलब ज्यादा ताकत मिलेगा
नहीं ऐसे नहीं होता
उनका तो हमेशा से मुलाकात
नहीं 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 शेर की जमात ही अलग है खून ही अलग है और देह अभिमानी सांधे का खून अलग है। जो शेर होता है टाइगर की बात छोड़ दो जो शेर होता है वो साफ दिल होता है और सीधा हमला करता है। हाथी तो फिर भी जुड्ड में रहते हैं अकेला कभी मुकाबला नहीं करेगा शेर का। शेर अकेला रहता है जंगल में झुंड में रहने की उसको दरकार ही नहीं।
फिर बेहद के हाथी और शेर में मेल हुआ
है
फिर बेहद के शेर और जो हाथी है
बेहद का शेर भी अकेला जंगल में रहता है यज्ञ के आदमी भी अकेला था परंतु उस समय ज्ञान नहीं था और अभी तो ज्ञान है ईश्वरीय प्रॉपर्टी है ईश्वरीय शक्ति है इसलिए फेल होने का सवाल ही नहीं। ओम शांति।